ओम शांति। आज का विषय है भोजन में एकाग्रता। ये तीन विषय हैं इकट्ठे, एक तो भोजन, दूसरा एकाग्रता और तीसरा भोजन में एकाग्रता, 3 in 1। तो हम तीनों को इकट्ठा इकट्ठा ही चर्चा में लाएंगे। तो कहा जाता है भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। भोजन का जीवन में बहुत महत्व है। जैसे बिना आत्मा की शरीर की वैल्यू नहीं है, ऐसे बिना भोजन के भी शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा। जितना हम अच्छा भोजन करते हैं उसका प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। जिन संकल्पों का भोजन हम अपने आत्मा को दे रहे हैं उसी अनुपात में हमारी खुशी रहती है या चिंतन चलता है। उसी तरह से हम शरीर में जितना अच्छा भोजन उसको देते हैं उसी तरह शरीर भी हमारा तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। विषय है भोजन में एकाग्रता बढ़े कैसे, क्योंकि एकाग्रता जब तक किसी भी कार्य को हम करते हैं अगर एकाग्रता नहीं है तो उसका जो संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त होता है। तो एकाग्रता हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भी उन्नति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जितना हमारा मन बुद्धि स्थिर होता जाएगा, चित्त शांत होता जाएगा, चाहे वो शारीरिक एकाग्रता है या मन की एकाग्रता है, उतना परिणाम भी सफलता भी हमारे हाथ में अच्छी लगेगी, जल्दी सफलता प्राप्त होगी। कोई भी हम कार्य करते हैं तो एकाग्रता उस कार्य में होती है जिस कार्य के हम परिणाम अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, उसके फायदे जानते हैं। अगर वहां हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है तो हमारी एकाग्रता भी भंग होती है। इसलिए पहले हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और उससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो ना चाहते भी मन वहां एकाग्र हो जाता है। इसी तरह से बाबा ने भोजन के बारे में बहुत सारे महावाक्य उच्चारित किए हैं। बाबा ने कहा बाबा को भंडारे में कौन से बच्चे चाहिए, योगी बच्चे, जो योग युक्त होकर भोजन पकाएं बनाएं और खाने वाले का भी हृदय शुद्ध हो जाए। और ये जो भोजन है ब्रह्मा भोजन, इसको क्या कहा जाता है, दुख भंजन भोजन। तो भगवान के मुखारविंद के द्वारा उच्चारित हुए महावाक्य जरूर वो, उस भोजन को करने से केवल हमारे शारीरिक दुख नहीं, अनेक जन्म के शारीरिक साथ आत्मा के दुख भी दूर किए जा सकते हैं, अगर हम उसको उतनी तन्मयता से, उतना श्रद्धा से, उतना आस्था से, उतनी भावना से उस अगर भोजन को ग्रहण करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे प्रतिकूल की बजाय अनुकूल ही हमारे कार्य करेगा। बाबा ने कहा अगर भोजन याद भी नहीं खाते हैं तो कौन खा जाता है, माया खा जाती है। और भोजन खाने से जैसे शरीर को ताकत मिलती है, ऐसे किसको ताकत मिलेगी, माया को ताकत मिलेगी। और वो जो ताकत है वो पूरा दिन काम करती रहेगी। अगर हम भोजन खाते हैं बाबा की याद में तो हमारी ताकत बढ़ेगी, अगर हम याद में नहीं खाते हैं तो माया की ताकत हमारे ऊपर ही हावी होती रहेगी। तो जितना हम याद में भोजन को खाते हैं उतना ही हमारे जो कोई पेट की बलाऊ है वो खत्म हो जाएगी। 3-4 दिन पहले भी शायद 1 महीना पहले मुरली में महावाक्य थे कि बाबा चैलेंज करते हैं, क्या केवल याद में रह के नहीं, पूरा समय याद में रह के भोजन खा के दिखाओ, पूरा समय। ब्रह्मा बाबा भी अपना एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कठिन साधना है वास्तव में, भोजन के समय भी संपूर्ण याद में रहना है और श्रीमत के उसको अनुकूल हमें ग्रहण करना, उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करना, जो है जैसा है उसी श्रद्धा भावना से उसको ग्रहण करना, वो कितनी बड़ी साधना है। एक एक गिट्टी बाबा ने और भी कहा था 2-3-4 दिन पहले, पहली गिट्टी तो खाते हुए आदमी और बाकी अंत में याद आता है कि बीच वाली गिट्टियां कौन खा गया। वो फिर 2 ही गिट्टियां ताकत देती हैं, बाकी गिट्टियां माया को ताकत चली जाती है उसकी। इसलिए भोजन करते समय हमको पूरा उसका आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं किसी का अगर हम स्वागत करते हैं तो स्वागत करने से सामने वाला बहुत खुश होता है, उसका गर्मजोशी के साथ पूरा मनोयोग के साथ पूरा सम्मान के साथ किसी का आदर करते हैं तो वो हमें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इसी तरह से अगर हम भोजन के प्रति भी वही भावना रखेंगे तो जो भोजन की सारी शक्तियां हैं उसको हम पूरा अनुभव कर पाएंगे, भोजन हमें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हम भोजन को केवल भोजन समझ के नहीं खाएं बल्कि उसको हम आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन समझकर स्वीकार करें तो हमारे जीवन में अनोखे बदलाव आएंगे। क्योंकि सारे दिन में विशेष तौर पर ये तो सभी के पास टाइम होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना भोजन के रहे, भोजन तो सबको ही करना होता है। योग के लिए किसी को टाइम मिले ना मिले लेकिन भोजन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर भोजन को हम उन्नति का साधन बना लें और उसी समय को हम योग का भी साधन बना लें कि हमें विशेष टाइम मिल रहा है भोजन के लिए, योग करने के लिए। गुलजार दादी जी कहते थे कि पानी तो पीते हो ना, कम से कम पानी पीते समय भी अगर एक सेकंड भी बाबा की याद में रहो तो भी जीवन में बदलाव आएगा। तो भोजन में हमारे पास कितना टाइम होता है सारे दिन में, अगर हम समझ लीजिए आधा आधा घंटा भी नहीं, चलो 20 मिनट ही करते हैं तो तीन टाइम करने से 60 मिनट, एक घंटा हमारा ये हो जाता है। तो उस समय हम पूरी श्रद्धा के साथ बाबा को बड़े प्यार से भोग लगा के उसको स्वीकार करें, स्वागत करके भोजन का, तो उसकी ताकत हमें पूरा मिलेगी और वो भोजन हमारी हिफाजत करेगा, सुरक्षा करेगा। और जिन विचारों के साथ हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वही विचार हमारी दिनचर्या में शामिल होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा भोजन पर ही हमारी योगयुक्त अवस्था आरंभ होती है, उसके लिए पूरी दिनचर्या पर भी हमें सावधानी रखने की जरूरत है। अगर हमारी दिनचर्या ऊपर नीचे हो रही है और सीधा हम भोजन पर जाते हैं तो पूरा प्रभाव उसका भोजन के ऊपर पड़ेगा और वही दिनचर्या हमारे मन में भी चली जाएगी, उसी के अनुकूल हमारे विचार चलेंगे, उसी के अनुसार हमारे व्यवहार आचरण जो बोलचाल वही परिवर्तन की प्रक्रिया उसी के अनुसार होगी। इसलिए दोनों का कनेक्शन है, दिनचर्या भी जरूरी है सारे दिन में, दिनचर्या अर्थात किन संकल्पों का हम भोजन कर रहे हैं। बाबा ने कहा मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो बच्चे ऐसे संकल्प करते जिन संकल्पों का भोग मैं स्वीकार कर सकूं। तो सारे दिन में हमारे कौन कौन से ऐसे संकल्प चल रहे हैं जिससे हमारी प्रगति हो, हमारी उन्नति हो, हमारा उत्थान हो, हम जैसे तीव्र गति से आगे उड़ान भर रहे हैं ये अनुभूति हो, तो वो ही मायने रखता है कि दिनचर्या को भी हमें थोड़ा ऊपर उसके ऊपर नजर दौड़ाने की जरूरत है, अटेंशन रखने की जरूरत है, उस पर चलने की जरूरत है ताकि हम भोजन के समय भी पूरे एकाग्रता के साथ उस भोजन को ग्रहण कर सकें। और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको जैसे एक प्रेमी का पत्र आता है तो प्रेमिका उसको कितनी बार पढ़ती है, बार बार पढ़ती है, और उस पत्र को प्रेमी का भी आ सकता है, प्रेमिका दोनों का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, लेकिन उस पत्र को हम बार बार कितना पढ़ते हैं, कितना प्यार से देखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, जैसे बाबा के हाथ के लिखे वो पत्र हैं, कितने साल बीत गए, कितने दशक बीत गए हैं लेकिन अभी वो यादगार के रूप में, और जिन जिनको बाबा ने पत्र लिखे हैं उनको कितना नशा रहता है। तो अगर हम ये भी, आपके पास भी है, वेरी गुड, तो वो अव्यक्त पत्र है, लेकिन अव्यक्त समय में थे आप तो बाबा का भी जैसे भोजन को भी ऐसे समझ कर स्वीकार करें जैसे ऊपर से एक परमात्म प्रेम का पत्र आया है, ये परमात्म प्यार का, परमात्म प्यार का प्रसाद आया है, ये परमात्म शक्तियों का प्रसाद अवतरित हुआ है। तो प्रसाद का भी संसार में कितना वैल्यू होता है, महत्व होता है, अगर हम उसी को उन्हीं विचारों के साथ उसी भावना के साथ उसको ग्रहण करें तो वो प्रसाद के रूप में पूरा काम करेगा। संसार में थोड़ा भी प्रसाद गिर जाता तो कैसे उसको आंखों में लगा के खा लेते हैं, तो हमारे पास साथ सामने तो भोजन की इतनी जो भी थाली होती है, इतनी चीजें होती हैं, उसको प्रसाद ग्रहण करके अगर स्वीकार करें तो कर्मेंद्रियां हमारी उसी अनुसार शीतल हो जाएंगी। जैसे कल का स्लोगन बहुत सुंदर था, कौन सा, संपूर्ण पावन बनने के लिए कर्मेंद्रियों को तपाना है, तो ये कितना सुंदर योग का विजन था। तो उसी तरह हमारी कर्मेंद्रियों को भी शांत करने की अहम भूमिका भोजन भी करता है। भोजन भी बाबा को स्वीकार कराया गया है, भोग है, यह है योग बल और वो है बाबा को स्वीकार कराया हुआ भोग, उससे भी हमारी कर्मेंद्रियां शांत होती है। तो हम उसी अनुपात में माना उसी दृष्टिकोण से उसी मेंटेलिटी से उसी मानसिकता से अगर भोजन को स्वीकार करते तो हमारी मानसिक स्थिति जो है वो भी शांत हो जाएगी, स्थिर होता जाएगा, कर्मेंद्रियां भी शांत होती जाएंगी। देखा गया है जब जब अधिक मिर्च मसाले का अचार का भोजन किया जाता है या गरिष्ठ भोजन किया जाता है तो हमारी एकाग्रता को भंग कर देता है, हमारी दिनचर्या को वो ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है। तो भोजन करते समय भी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि हमारी एकाग्रता भंग ना हो। एकाग्रता भोजन के समय भंग क्यों होती है? क्योंकि या तो हम सारे दिन में जो इधर उधर के विचार हैं उन विचारों का उन संकल्पों का बोझ लेकर बैठते हैं और वही संकल्प फिर टेबल पर जब भोजन करने बैठते हैं तो टेबल टॉक पर आरंभ हो जाते हैं। वहां सामने हम ऐसी मित्र मंडली का एक निर्माण कर लेते हैं जिसके बिना फिर हम रहना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भोजन का समय आएगा तो सभी वही चेहरे सामने नजर आएंगे। रामलीला मंडली, राम नहीं रावण लीला मंडली जो राम से विमुख करने वाली है। तो राम रावण की शक्ति भी कम तो नहीं है ना। बाबा ने कहा था चार पांच दिन पहले कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जीत होगी, माया की भी जीत होगी ना। तो कदम कदम पर माया भी अनेक रूपों में हमारा इंतजार करती रहती है, क्योंकि बाबा कहते रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। तो देखा गया जब भी किसी पुरुषार्थ के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो माया भी उसी समय अटैक करती है। तो भोजन करते समय कुछ एक चीजों की परहेज रखना अनिवार्य है ताकि उस समय को हम पूरा योग में गिनती कर सके उसको। तो एक तो उस समय हम प्रपंच में ना रहें मित्र मंडली से, हम दूसरा सावधानी पूर्वक हम दूरी बनाए रखें। और बहुत इसमें मेहनत की बात है क्योंकि जिनको हम अनेक लंबे समय से जिनके साथ हमने दोस्ती बना के रखी है, जिनको हमने अपनी बातें सुना के रखी हैं, उससे दूरी बनाना थोड़ा मेहनत लगती है। तो कठोर हृदय से भी दूरी बनाना बहुत जरूरी है। उस समय अगर हम टाइम बदली, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, हम कभी कभी करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है सामने वाला का टाइम चेंज हुआ पड़ता है, वो भी उसी समय दिखता है, ये भी मुसीबत होती है। तो टाइम की बजाय दूसरा स्थान चेंज किया जा सकता है, स्थान तेज चेंज किया जाता है। अगर सामने वाला वो क्योंकि माया तो अनेक रूप से आएगी ना तो वो सामने दिखाई देता है, तो अगर वो दिखाई दे रहा है तो स्थान चेंज किया जा सकता है। चलो उसी समय वो दिखाई दे रहा है तो अपना प्रोसेस में किनारा जो मैं थे वो अगली बार कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद भोजन किया जा सकता है तो और बाद में भोजन ना मिले तो भी मुसीबत है। तो या तो उस समय ऐसे किया जा सकता है कि सामने वाले को अगर हमें स्वयं को बदलाव करने की हमारी अंदर में मंशा है तो सामने वाले को भी अगर बहुत जरूरी अगर बातें करने भी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण समय में हमको कोई इमरजेंसी काम भी आ सकता है, तो उस समय हम स्पिरिचुअल चिटचैट कर सकते हैं कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, भोजन के बारे में क्या कहा है, या कोई भी पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा भले हमको याद रहो लेकिन सामने वाले को भी पूछना चाहिए भाई क्या था। तो हाँ जी एलर्जी होती है तो उसको हम पहले तो उसकी हमको मनोस्थिति जांचनी चाहिए, उसकी मनोदशा कैसी है, उसी अनुसार अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, भारी डोज नहीं दिया जाए कि हम अगर उसको एलर्जी है तो हम दूसरे तरीके से कुछ सुना सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट याद आ रहा है, अगर वो नहीं सुना सकता है तो हम सुना सकते हैं उसको भी और हल्का सा, जरूरी नहीं है हमारे साथ। हाँ नहीं बैठेंगे तो अच्छी बात है, अगर एलर्जी होगी ये भी हमारा कल्याण है, एलर्जी अपने आप ही किनारे हो गया बेचारा, ना करने के बजाय वो स्वयं किनारे होता है। तो उस समय हम इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हमारा बातचीत किस तरह की होनी चाहिए। दूसरा जो संसाधनों का जो संसार विज्ञान के संसाधन जितने भी हैं जो हमारे मानसिक स्थिति को एकाग्रता को भंग करते हैं वो भी हम कितना यूज करते हैं, क्योंकि भोजन पर ही कई बार देखा जाता है कि भोजन पर ही मोबाइल में कोई छोटे मोटे क्लिप होते हैं, वीडियो होते हैं, तो वो भी उस इसमें कई बार देखा है कोई क्रिकेट का मैच चल रहा तो वहां भी देखने जा रहे हैं। कितनी आसक्ति हो गई है साधनों से या खेल पाल से या संसार की वो चीजें जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा डाल रही है, हमारे पुरुषार्थ को नीचे गिरा रही है बार बार, तो उन चीजों को भी हमने कितना पकड़ के रखा हुआ है। तो उन चीजों से भी दूरी बनाना अति अनिवार्य है। और उससे पहले, ये तो हम भोजन करते समय, लेकिन उससे भी पहले भोजन बनाते समय बहुत सारी बातों की सावधानी रखना आवश्यक है। विशेषकर मधुबन में तो चलो ठीक है, लेकिन जब हम घर में रहते हैं, कर्म क्षेत्र रहते हैं, माताओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई ज्ञान में चलता है, कोई ज्ञान में नहीं चलता है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, केवल हम ही ज्ञान में चल रहे हैं, बाकी घर में कोई ज्ञान में नहीं है। तो उस समय भोजन जो है एक उनके लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता है दूसरों को परिवर्तन करने का, जो बाबा के ज्ञान को नहीं सुन रहे हैं, जिनको हम परिचय देना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं सुनते, जिससे उनको एलर्जी है। तो भोजन एक ऐसा माध्यम है, वो तो सभी को करना ही है। तो भोजन में हम अगर शक्तिशाली वाइब्रेशन भर दें, बाबा की याद में बनाएं, कौन किसको देख रहा है कि भोजन के समय हम क्या सोच रहे हैं, तो वहां हमें कहीं ना कहीं थोड़ा हमको लूज भी होना पड़ेगा। अगर हम बाबा की श्रीमत अनुसार बाहरी तौर पर अगर अड़िग रहते हैं तो सामने वाले को एलर्जी हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म साधना जो हमारी है वहां आरंभ की जा सकती है कि भोजन के समय हम ऐसे संकल्प क्रिएट करें, उस समय रसोई का ऐसा वातावरण बना दें, ऐसा ना हो कि रसोई में टेलीविजन लगा हो और सामने मार धाड़ चल रही है और टीवी में देखते हुए भोजन बना रहे हैं। तो अगर मार धाड़ देखते हुए मार पिटाई चल रही, लड़ाई झगड़ा चल रहा है सास बहू का, या बता रहे थे ना कल माता जी एक ही ड्रामा देखते हैं हम, कौन सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अब बताओ उल्टा चश्मा देखेगा तो घर में उल्टा पुल्टा ही होगा, कोई निमकी मुखिया पता नहीं क्या क्या सुना रहे थे, तो वो जो ड्रामा है वो तो घर में भी चलेगा, टीवी में क्या होता लड़ाई तो होती है ना। तो जो हम देख रहे हैं वो हमारा मन स्वीकार कर रहा है और वही उन्हीं उसी मानसिकता से हम भोजन तैयार कर रहे हैं और वो सारे वाइब्रेशन वो भोजन में जा रहे हैं। पुराने जमाने में होता था कि पानी में अगर कोई पीता था उस पानी को दोबारा नहीं पिया जाता था, दोबारा दूसरा पानी मंगवाया जाता है। हमें याद है पिछले जन्म में हमारे पिताजी जब भोजन करते थे, पिछले जन्म में माना इस ब्राह्मण लाइफ से पहले, इस जन्म में नहीं, आप पिछले जन्म में, तो वो पानी थाली जब भोजन थे तो पानी से ऐसे करते थे, उसको भोजन का शुद्धिकरण करते थे। तो कितनी उन चीजों का जो अज्ञान काल में भक्ति काल में भी उनका महत्व है। हमारे भी यहाँ निकलेश भाई जब भोजन करते हैं तो वो चप्पल खोल के कुर्सी पर बैठेंगे, और आजकल भोजन करते जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, भोजन करते हैं तो टेबल पर जूते पहने हुए और भोग लगा रहे हैं बाबा को। तो हमने विचार किया कि कितने हम जूते घर में बाहर खोलते थे, आजकल तो अंदर ही ले जाते हैं कोई भी, लेकिन पहले किचन में भी ले जाते हैं आजकल, तो पहले तो जूते बाहर खोलते थे, कितना उसकी शुद्धिकरण होता था, रोज चूल्हा चौका किया जाता था, वो गाय के गोबर से लीपा जाता था उसका, कितना वो एक फिर घर में कभी रंगोली की जाती थी, उस भोजन का कितना महत्व था, उसमें कितनी रौनक आती थी और पूरा परिवार एकता पूर्वक और नीचे बैठ के खाते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा के चित्र है इस्तियाल के ऊपर, शायद वो भोजन कर रहे हैं तो वो नीचे बैठ के कर रहे हैं, छत के ऊपर कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे भोजन करने की परंपरा तो कैसे करते थे, नीचे करना बहुत अनिवार्य है, और चौकड़ी मार के करते हैं, क्योंकि उसको कुछ वैज्ञानिक कारण भी रहे होंगे जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, नहीं तो टेबल पर ही खाते खाते बस वो जूते पहन के, टेबल पर नहीं बैठे तो कुर्सी पर होते हैं, टेबल पर भोजन होता है तो खड़े खड़े खाते हैं, और कई बार ऐसा देखा होता है कि चलते चलते भी खा जाते हैं, और जैसे भी लिया भी नहीं, अब ये कि डाला है उसी को स्टार्ट और दूसरी थाली भी ले रहे हैं, इधर से चालू उधर से ले रहे हैं। तो भोजन के प्रति हमारा जो एक सम्मान है वो कहीं ना कहीं उसका स्तर गिर गया है। तो किस तरीके से हम भोजन रहे हैं, किस माहौल में हम बैठ के कर रहे हैं, किन विचारों के साथ कर रहे हैं, उस स्थान का कितना हमने शुद्धिकरण किया है, उस माहौल में कौन से वाइब्रेशन भरे हैं, उन चीजों का हम ध्यान में रखकर भोजन करें तो वो हमारे ऊपर ध्रुवी हमारे सकारात्मक मन को एक अच्छे सकारात्मक विचार देगा वो भोजन। वास्तव में तो नहीं खानी चाहिए, मन में सभी को आवाज तो आता है कि ये ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, तो वो एक्चुअली पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, उनसे मुक्ति पाना कोई साधारण काम नहीं है। अब वो है तो छोटी सी बात ही, चलते चलते खा तो लेते हैं, लेकिन चलते चलते भी नहीं खाना चाहिए वास्तव में, वहीं बैठ के खा लो, या तो जहाँ टोली मिलती वहीं बैठ के खा लीजिए, तो और ही संतुष्टि होगी, चलने में भी ताकत आ जाएगी, या तो फिर भोजन के बाद खाइए। तो चलते चलते खाना भी एक ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा के चलते चलते या भोजन के समय कौन कौन सी मर्यादाएं हैं जिनको हम स्वयं ही चिंतन कर सकते हैं कि क्योंकि सभी का विचार अपने हैं, सभी का स्थान अपना अपना है, माहौल अपना अपना है, उसी अनुसार हम अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। पहले टाइम में ऐसा भी होता था कि भोजन करते समय अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तो उसको स्वीकार नहीं करते थे। हमें याद है हमारे पिताजी लौकिक में पिछले जन्म ही तो एक बार भोजन कर रहे थे तो किसी की दृष्टि पड़ गई तो पिताजी ने भोजन नहीं किया वो बाद में। हाँ, वो कितना एक बार जगदीश भाई का सुना होगा सभी ने, जगदीश भाई भोजन कर रहे थे, कमरा बंद करके भोजन बना रहे थे, तो भोजन बनाया किसी को और कोई उनसे मिलने आ गया और उसकी बात तो जगदीश भाई से कर रहे लेकिन दृष्टि सारी भोजन पर पड़ रही है, तो जगदीश भाई जी ने भोजन नहीं किया था वो। तो कितना महत्व है उस चीज का, इसलिए बाबा कहते दृष्टि दे के भोजन खाओ। क्यों? तो जरूर कोई ना कोई महत्व है ना, क्योंकि हमारी दृष्टि में ही बहुत सारी शक्तियां समाई हुई है। स्टॉप। हाँ, विश्वरतन दादाजी जहां भी जाते थे ईश्वरीय सेवा के अर्थ भाव बिशप किशोर भाऊ और विश्वरतन दादाजी, तो वो स्टॉप लेकर साथ में जाते थे। और हमें भी याद है जब नए नए ज्ञान में चले तो बहुत सारी बहनें वहां से बना के लेते थे और स्टॉप भी लेके आते थे, ट्रेन में स्टॉप लगा के चाय वाय बनाते थे, लेकिन वो बना लेते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, जहां स्टेशन रुकेगी आधा घंटा ट्रेन भाई वो जो खोमचे वाला खड़ा होता है, लारी वाला खड़ा होता है, चाय वाला खड़ा होता है, उसी के फ्राई पैन को सफाई वाई करके बना के प्लेट देंगे। और कोई कोई तो उसी को बोला रेडीमेड है, क्या फर्क पड़ता है, चाय कॉफी चलता है तो चला लेते हैं, मशीन मेड है। तो मशीन मेड भी हमारे पुरुषार्थ को मशीन जैसा बना देती है, जैसे मशीन से कोई अनुभूति नहीं होगी। एक होता है हाथ से बना हुआ भोजन खाना, एक है होटल जाके, होटल में भी हाथ से बना होता है तो दोनों, घर में भी हाथ से बना हो लेकिन भोजन होटल में भी हाथ से बना, दोनों में फर्क क्यों है? फिर वाइब्रेशन है उसके। माँ के हाथ का भोजन क्यों अच्छा लगता है, पत्नी के हाथ का भोजन इतना अच्छा नहीं लगता कईयों को, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में पता नहीं क्योंकि बहुतों ने अनुभव सुनाया है ये दो जन्म पीछे क्योंकि मां जो बच्चे को भोजन खिलाती है जो उसमें प्यार भरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं आप जाके मां को ढूंढो, अभी ऐसा नहीं करने का। बाबा ने हम सबको जगत माता बनाया हुआ है और बाबा ही हमारी माता है, और जब हम जहां भी भोजन करें तो उस भोजन में उतना स्नेह भरा होना चाहिए, बाबा को उतने प्यार से स्वीकार कराते हुए। और भोजन के समय कुछ हमको विजन भी क्रिएट करने पड़ेंगे, जो हम भोजन कर रहे हैं तो हम ऐसा भी सोच, क्योंकि अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाना है भोजन के समय, तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कल्प वृक्ष में नीचे बैठा हूं और पूरा कल्प वृक्ष लाइट का है, जो भोजन में स्वीकार कर रहा हूं वो कल्प वृक्ष के हर पत्ते को जा रहा है, उसकी शक्ति हर पत्ते को मिल रही है, अर्थात हर आत्मा को मिल रही है। और भी सोमान हम उसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे तीन संडे पहले मुरली में था कि तुम अन्नपूर्णा के भंडार हो, तो मैं आत्मा अन्नपूर्णा की भंडार में आत्मा अन्नदाता किसान को सर्व शक्तियों का साकाश दे रही हूं, मैं अन्नपूर्णा की देवी धरती मां को पवित्रता का साकाश दे रही हूं, मैं डबल आइट फरिश्ता आकाश को साकाश दे रहा हूं। ऐसे अनेक अनेक सोमान अगर हम यूज करते हैं तो हमारे मन की एकाग्रता भोजन के समय बढ़ जाएगी, और भोजन के समय जो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी जो सवेरे के या शाम में या बाकी सारी दिनचर्या में, वो हमें कार्य करती रहेगी, हमारे लिए एक शक्ति का कार्य करेगी और हमारे पुरुषार्थ को सहज निर्विघ्न बनाती जाएगी। तो भोजन में एकाग्रता करने के लिए इन चीजों की बहुत जरूरत है। दूसरा हाँ, ये इस पर अभी आ रहे हैं, जैसे वो बीच में और एकाग्रता भंग की होती है कि दूसरे की थाली में नहीं देखना है तो फिर तीसरे की थाली में देखना है, अरे नहीं देखना उसमें भी। तो अर्थात दूसरे की थाली में जो झांकने की आदत है, वास्तव में जो दूसरे की थाली में झांकने की आदत है अर्थात हम संतुष्ट नहीं है, जो हमने अभी सुना क्लास में पहले इंग्लिश में, तो संतुष्टता नहीं है, जो हमको मिला उसी को हम बड़े प्यार से स्वीकार करें। अगर दूसरे की थाली में झांक रहे हैं, चलो अगर हमको हमारी मन ललचा भी रहा समझ लीजिए, अगर बाबा को हमारी पूर्ति करनी होगी तो कहीं ना कहीं से सब्जी वो दिला देता है, कोई ना कोई ऐसे भाई आएगा वो दे के चला जाएगा, हमने थोड़ा मांगा, लेकिन वो भी है, वो भी बताने जा रहा हूं। लेकिन नहीं आया तो वो तो स्वीकार कर ही लेना है। लेकिन एक बात और भी है, अगर कोई हमको सब्जी दे भी जाता है तो पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि उसकी मानसिकता कैसी है, उसने किस तरीके से बनाया, अपने स्वाद की जीव के स्वाद को शांत करने के लिए बनाया या सचमुच उसने बाबा को भोग लगा के बनाया। फिर दूसरा, अगर हम अनजान व्यक्ति के हाथ का भी खाते हैं तो वो भी हमारे मानसिक एकाग्रता का तो भंग कर देता है। अनजान ब्राह्मणों का भोजन का खा लेते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमको पता है पहले बहनें केवल घरों में पानी भी नहीं पीती थी, पानी के सिवाय दूसरा कुछ लेती थी, कहीं कहीं पानी तो पी लेते थे लेकिन कुछ लिया नहीं जाता था। लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा लूज होता जा रहा है, क्योंकि सेंटर में भी क्या होता है, टोलियां तो इतनी बनती नहीं है, तो माताओं को बोल दिया जाता है कि ठीक है बना के ले आना। अब घर में किसने देखा, किसने बनाई, हमको ये भी पता है बहू ने थोड़ी मदद किया, पूरी बहू मदद ही करती है क्योंकि माता को तो इतनी आती नहीं है, और बहू जो वो हाईटेक जमाने की है वो सब सीखती है रेसिपी क्या होती है, माता को क्या पता रेसिपी क्या होती है, और बहू डाउनलोड करेगी कंप्यूटर में सारा रेसिपी क्या होती है, बन जाता है वो, तो वो भी एक देखने वाली चीज है, क्योंकि इतनी टोलियां कहां बनाएगी घर में। क्योंकि हमको पता है एक भाई है जो होटल में काम करते हैं, कभी कभार आते हैं मुख में पान होता है और वो भी बहनों को टोली बना के देते हैं और उसको बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा भी है। अब आजकल तो बाहर भी प्रसाद मिल रहा है, टोली बाहर से लेके जाती है, समय अनुसार भी परिवार बढ़ गया तो बाहर से खरीद के जाते हैं टोली। लेकिन एक है बाहर एक यज्ञ के अंदर से टोली मिलना, थोड़ा काना दाना, और एक बार पैसे से खरीद के लेके जा रहे हैं, कितना फर्क पड़ गया उसका। तो भोजन का जो है ना वो हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है ना। जैसे एक साधक था, बहुत साधना करता था, जंगल में खूब तपस्या करता था, उसकी ख्याति थी दूर दूर तक, वो अपनी साधना के लिए प्रख्यात हो गया था, बड़ा त्यागी तपस्वी। तो राजा को उसका पता चला तो राजा ने सोचा चलो ठीक है मैं भी उसके दर्शन कर लूं। तो अपनी पूरी मंडली के साथ राजा वहां जाता है जंगल में, उस साधक को प्रणाम करता है, उससे बातचीत करता है और उसकी सेवा करने के लिए वो उसको कहता है कि आप हमें सेवा का मौका दीजिए और हमारे घर में चलिए आप। तो साधक तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है। लेकिन संतों का जो हृदय थोड़ा मुलायम होता है, नर्म होता है, कोमल होता है, तो संत ठीक, राजा का बड़ा अनुनय विनय करने के बाद वो साधक चला जाता है घर में। तो उसकी बहुत उसकी खातरी की जाती है साधक की, लेकिन वो न्यारा प्यारा रहता है, बस थोड़ा अपना सा उसने लिया जो उसको पेट के लिए भूख शांत करने के लिए चाहे उतना लेता है, बाकी छोड़ देता है वो। तो लंबे समय तक वो भोजन करता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, उसको स्नान करने जाना था, तो स्नान करने जब गया था तो वहां स्नान गृह में तो रानी का हार वहां रह गया था। उससे पहले रानी स्नान करके गई थी राजा की घरवाली, तो साधक वहां स्नान करने जाता तो रानी का हार वहां रह गया था। अब उसका मन ललचा गया कि हार मैं ले जाऊं तो अच्छा रहेगा, कीमती हार है, ऐसा हीरे जवाहरात का हार है, ये तो बहुत कीमती है, इसको ले जाता हूं मैं। तो वो चुरा के ले गया, आराम से रहूंगा, तो चला जाता है चुपके से महल से बाहर चला जाता है। तो फिर बाद में रानी देखती मेरा हार तो है नहीं है, तो वहां देखती वहां भी नहीं है स्नान गृह में, तो पता किता कौन लेके गया। तो ढूंढा जाता है इस घर से गायब कौन है, तो साधक ही गायब है, वो साधक बेचारा चोरी करके ले गया। तो वो जाता है बड़ी दूर जंगल में, बहुत दूर चला जाता है। तो फिर पूरा राजा अपनी सेना के साथ उसको ढूंढने के लिए जाता है, तो जब देखता है कि ये तो यहां बैठा हुआ है, फिर उसको ख्याल आता है साधक को, ये मैंने चोरी क्यों किया, ये मेरा जीवन इतना त्यागी तपस्वी है, इसमें चोरी क्यों किया, क्यों ख्याल आ गया मुझे ये। तो फिर वो राजा भी मिल जाता है, राजा के साथ फिर वो वापस जाता है, राजा को बोलता है मैं तो गलती से चोरी कर ले, मुझे समझ में नहीं कि चोरी क्यों किया। तो घर में जाके पता किया जाता है क्यों चोरी किया। तो फिर पता करते हैं, फिर साधक ने बोला जो आपका भोजन बनाता है वो कौन है। तो फिर उसको बुलाया गया, तो उसने बुलाया, उसने कहा कि जो भोजन बनाने वाले को क्या कहते हैं, रसोई यानी बावर्ची। तो बोला शेफ, तो भील शेफ, भीम तो खाने वाला। तो उसको बुलाया कि जिस समय मैं भोजन बनाया था मेरे मन में चोरी के ख्याल आ रहे थे। तो वो कहां अटैक किया, क्योंकि इतने समय से वो साधक था, अब साधक ने इतने लंबे समय से खाया तो उसकी एकाग्रता धीरे 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 भंग होती गई और वो चोरी के विचार सामने आते गए और वो उसने फिर उसको काम में लगा दिया, चोरी कर ली। इसी तरह से अगर ब्राह्मण लाइफ में हमारी धारणाएं बड़ी मजबूत है तो हम इस आशंका में नहीं रहे, इस शंका में कि हमें तो कुछ भी नहीं होगा, हम खा लेंगे, तो धीरे 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 हमारी एकाग्रता भंग हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी साधना को पूरा वो ध्वस्त कर देगी। इसलिए खाते समय भी हमें भोजन करते समय भी अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि उस समय को भी हम अपनी उन्नति का साधन समझ के इस जीवन का आनंद ले सकें। और भोजन करते समय बाबा को जो हम भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद एक थोड़ी आदतों का नई कुछ आदतों का निर्माण करना पड़ेगा, जो आदतें हमारे पुरुषार्थ को एकदम ऊपर ले जाएं। जैसे एक बात तो हमको भी करनी पड़ती है, मैं ऐसा नहीं मैं जो सुना रहे हैं मैं सारा करता हूँ, 5-7% ही करता हूँगा मैं भी, लेकिन बाकी करते हैं तो उसमें ध्यान तो रखना पड़ता है। भोजन एक गिट्टी बाबा ले रहा है, दूसरी गिट्टी मैं खा रहा हूँ, एक गिट्टी बाबा खा रहा है, दूसरी गिट्टी मैं खा रहा हूँ, ये तो हमारी आंतरिक साधन है। भले हम बातचीत करनी पड़ रही है, लेकिन ये तो हम मन से तो रख सकते हैं ना, तो उस समय भी हमारे एक संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता हासिल होता है, मन में एक संतुष्टता मिलती है कि कम से कम इतना तो याद तो कर रहे हैं हम। और धीरे धीरे हम इसकी इस आदत को बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन वो आदत इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत होती जाएगी कि हमें सहज काम लगेगा। जैसे कोई भी हमको काम अगर सहज आता है तो हम आंखें बंद करके उस कार्य को कर लेते हैं, इसी तरह हम अपने मन की आदतों को इतना श्रेष्ठ बना दे ताकि वो भोजन के समय भी अपनी एकाग्रता को हम बनाए रख सकें। तो ये कुछ एक बातें थी, तो भोजन के समय एकाग्रता को, हाँ, जो भोजन नहीं बनाते हैं, जिनको भोजन बना बनाया खाना पड़ता है, तो कम से कम 5 मिनट तो हमको भोग लगाना चाहिए। 5 मिनट भोग लगा के उस भोजन को बाबा के पास बतन में हाँ, तो उनकी थालियां भी ऊपर मर्ज कर दो कि ऊपर ही खा रहे हैं बैठ के, वो बाबा के सामने खा रहे हैं। नहीं, वो तो उड़ाएंगे, वो तो और ही अच्छी बात है, और ही हमारी स्थिति का पता चलेगा कि वो तो उड़ाएंगे। कोई कोई तो ऐसे भी होता है, कोई भाई भोजन कर रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, जलेबी भोग में बनी थी, तो एक आंखें बंद करके बैठा हुआ है और दूसरा भोग लगा रहा है, दूसरा सामने खा रहा है, तो उसकी जलेबी उठा के खा गया वो तो बाद में देखा कहाँ गई जलेबी, बोला बाबा खा गया जलेबी, तुमने भोग लगा खा गया वो अगर ये चीजें होती है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खा गया क्या फर्क पड़ता है। तो कई बार ऐसे भी होता है, भोजन पर ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल में कई जो है ना बहुत सतर्क होते हैं, बहुत वो अपने मन के पक्के होते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है और भोजन कर रहे हैं, अगर मुख में डाला हुआ तो ऐसे नहीं कि बैठे रख दे डाओ, या फिर ऐसे आया बस ऐसे ही, जब तक ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हमारा हाथ ऐसे रहेगा बस उसको खा लेने का या रख देने का नहीं तो वो दूसरे देखेंगे तो उनको भी उनकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। तो भोजन हम याद में खाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो हम भोजन याद में खा रहे हैं, दूसरा वो आसपास का वातावरण अच्छा बन रहा है, तीसरा देख जो हमको देख रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि भोजन याद में खा रहे हैं, चौथा हमारा अंतकरण शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, पांचवा हमको बाबा से दुआएं भी मिलेगी, हमारा जमा का खाता भी बढ़ेगा, और एक अंदर में संतुष्टता रहेगी कि हम श्रीमत अनुसार विधि पूर्वक बाबा को भोग लगाकर भोजन कर रहे हैं, और उस बाबा उस भोजन में हमको बतन में इमर्ज करके उस भोजन में जैसे बाबा की सारी शक्तियां भर रही हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भर रही है, ये 5 तत्वों का बना हुआ भोजन है, इन 5 तत्वों के बने हुए भोजन में छठे महातत्वों की शक्तियां भर रही हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां उसमें समाहित होती जा रही हैं, पूरी बाबा की सर्वशक्तियां उसमें जा रही हैं और वो भोजन में ग्रहण कर रहा हूं। तो इन शुद्ध संकल्पों के साथ, शक्तिशाली समर्थ संकल्पों के साथ यदि हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन भी हमारा एक योग में गिनती में हो जाएगा और वो भोजन शक्तिशाली रहेगा और वो हर भोजन की गिट्टी स्वाद लगेगी। नहीं तो बिना मिर्च मसाले का भोजन करते हैं तो वो फिर ऐसे लगेगा और स्वाद ही नहीं लगेगा, बाबा की याद में नहीं, ऐसे फिर भारी मन से खाएंगे, खिन होके खाएंगे और फिर पूरा दिन भी मन भारी भारी रहेगा, और वो भोजन बिना भोग के खाए तो वो गैस भी करेगा फिर, इसलिए भोग लगा के खाना गैस नहीं करेगा कुरुक्षेत्र अंदर में द्वंद्व चलेगा, अंदर में 10 वैरायटी रखी है, गुलाब जामुन भी है, दही भी है, दूध भी है, और सारा अंदर में इकट्ठा कर लिया तो अंदर में युद्ध छिड़ेगी फिर आपस में। भोजन करते समय हमको इन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है जी। हाँ, भोजन कितना करना चाहिए, कहा जाता है भोजन जब हम लगता है कि थोड़ा सा पेट खाली रहा है तो उसमें छोड़ देना चाहिए। ये हमको पहले दिन में प्रैक्टिस करनी है, और अगर छूट भी जाता है तो जो मान लीजिए भोजन अगर छूट भी है किसी कारणवश, तो भोजन कहा जाता है पहले जमाने में उस भोजन को फेंका नहीं जाता था, उनको पंछियों को खिलाया जाता था, पशु को खिलाया जाता, गाय को खिलाया जाता था, क्योंकि जो मूक हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको भोजन कराना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता था पहले। नक्की में देखिए, हम सवेरे सवेरे देखते हैं नक्की में दाना डालने डालते हैं, पंछियों को डालते हैं, वो पंछी कितना खा के खुश होते हैं, और वो सूक्ष्म में दुआएं मिलती हैं, और मछलियों को खिलाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि पशु पंछियों को खिलाने से या मछलियों को खिलाने से या गाय को खिलाने से कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो जो भोजन अगर किसी कारणवश बच भी जाता है तो हम उसको वेस्ट नहीं करें, फेंकने के बजाय किसी को खिला देना चाहिए। पहले तो भोजन हमको लेना ही थोड़ा चाहिए, दोबारा ले सकते हैं। अगर ले ही लिया किसी कारणवश, दोबारा खत्म हो गया तो फिर कई बार तो लोग नहीं, ऐसा भी होता है कई बार लोग कम ही लेते हैं, क्योंकि दोपहर को पूर्ण पूरी बनने वाली है तो क्या करेंगे फिर, ये भी तो होता है। तो जब हम सवेरे उस समय थोड़ा ले सकते हैं तो उस समय क्यों नहीं ले सकते, खत्म हो जाएगा तो अगर हम खत्म हो जाकर, कई बार हमने ये भी देखा नाश्ते वगैरह हम कई बार लेट जाते हैं तो नाश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन गर्म गर्म पोहा आ जाता है। क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसा नहीं कि हम खाने के लिए जी रहे हैं, बल्कि हम जीने के लिए खा रहे हैं, अर्थात अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए खा रहे हैं, ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त हो, हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर सकें, हमारा जो शरीर है वो भोजन हमारे शरीर को तंदुरुस्त रख सके। तो उस मानसिकता से कैसे खा रहे हैं, संग्रह वृत्ति तो नहीं है, लेकिन कुछ कईयों की आदत होती है, कुछ अच्छी चीज बनी है तो उसको लेके रख लेंगे। अब देंगे कब, चार दिन बाद। किस लिए दे रहे हैं, सफल करने के लिए। वो चार दिन बेचारी सारी चीजें खराब हुई है तो रखने वो फिर डबल का भी डबल बोझ बन जाता है। कि एक तो उसमें हमने रख लिया अंदर से संग्रह लालच का जो अंदर से बना हुआ है एक मेंटेलिटी पहले से, तो वो लेके रख रहे हैं और उससे हमको दे नहीं रहे हैं। कई बार हमने देखा है बहने में सेंटरों में पुराने पुराने टोले खिला देती है, बस खराब बात है ये भी, क्योंकि हमने भी खाई है। भले कोई बोलता नहीं है लेकिन एक खराब टोली नहीं खिलानी चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड, वो केवल नींबू के अचार के लिए होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। कहते नींबू का अचार जितना पुराना उतना अच्छा, लेकिन बाबा ने अचार खाने के लिए मना किया। हाँ, नींबू के अचार के लिए बाबा ने बोला था एक बार, जब हम नहीं थे इधर, पहले बोला था। लेकिन वो किसी के लिए बोला, सभी के लिए नहीं बोला हुआ, सार्वजनिक नहीं बोला हुआ है, तो व्यक्तिगत बोला हुआ किसी के लिए, हाँ जी, बदहजमे के लिए। तो ये भोजन हजम हमको तब होगा जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे। जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा, वो भोजन करते समय भी ज्ञान की बूंदें टपकती रहनी चाहिए, ज्ञान का चिंतन चलता रहना चाहिए, ज्ञान की चर्चा चलती रहनी चाहिए, तो भोजन हमको फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, तो ही हम अपनी एकाग्रता को कायम रख सकते हैं। नहीं तो भोजन तो चारों तरफ से माया, अधिकतर भोजन के समय ही आती है। ठीक है, ओम शांति।